السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک فکر لگا لی، یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی فکرات کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جسے طرح طرح کی دنیا کی فکریں پریشان کیے رکھیں اور وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کو بھولا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دنیا کی فکر ہی لگی رہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور پھر بھی اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کے لیے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں کو اکٹھا کر دے گا، اس کے دل میں غنا بھر دے گا اور دنیا خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی. ان دونوں احادیث سے پتہ چلا کہ فکر کی جانے والی چیز اصل میں آخرت ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. جو شخص اس فکر میں مصروف رہے گا اس کے دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی نپٹ لے گا، خود ہی سدھار دے گا، کیونکہ آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا وہ ایسا ہے کہ اس پر چلنے سے دنیا کے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اس کے برعکس کرتا ہے، آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، تو اس کو کبھی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کچھ اور دیکھ سکے. وہ اسی ادھیڑ بن میں دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور بس زندگی اسی طرح تمام ہو جاتی ہے. اس کے دماغ میں ہر وقت بس یہی فکرات حاوی رہتی ہیں، اور وہ بس انہی چکروں میں رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نقصان نہ ہو جائے، کسی طرح مجھے یہ چیز مل جائے، کسی طرح وہ حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، نہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ وہ کن فکروں میں پڑا ہوا ہے. اور یہ باتیں آج اتنی ٹرو ہیں کیونکہ آج اتنی ساری فکرات ہیں جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو آکیپائی کیا ہوا ہے. ہر ٹائم ہمارے ذہن کسی نہ کسی فکر میں الجھے میں، ہر وہ لمحہ جو ہم فیس بک یا ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا انسٹا پہ، جس پہ بھی سوشل میڈیا پہ ہم سکرول کرتے ہیں، ہر منٹ جو ہم لگا رہے ہیں اس کے بدلے کوئی کمائی کر رہا ہے، کوئی پیسہ بنا رہا ہے. ہمارا جو وقت ہے اس کو کوئی کیش کرا رہا ہے. ہم اپنا وقت دے رہے ہیں جس سے دوسرا نفع کما رہا ہے، اور دوسرے ہمارا وقت لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں روز بنا رہے ہیں. آپ ایک ویڈیو کھولیں، دوسری کھولیں، پھر اس کے بعد تیسری نکل آتی ہے، وہ کھول کے بیٹھ جائیں، تو ہم اس میں روزانہ دوسری فکرات کے علاوہ بہت سارا قیمتی اپنا وقت لٹاتے جا رہے ہیں، ہمارا سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے اور کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ ہمارا سرمایہ کیا اتنا ہی بیکار ہے کہ ہم اس کو پھینکتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر وقت چلا گیا، اور اس وقت کے سرمایے کو جس نے کبھی واپس نہیں آنا ہم یوں ضائع کرتے رہتے ہیں. اور انسان وہ مخلوق ہے جس کی ایک شروعات بھی ہے اور اس کا ایک اینڈ بھی ہے، صرف اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو الاول الاخر ہے. यानी जब कोई नहीं था तब भी वो था, और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। तो उस इसी से उसके ये नाम है अल अव्वल अल आखिर, के अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब ये जहान, ये कायनात, सोचें जरा, इमेजिन करें, ना कोई सितारा, ना कोई सैयारा, ना कोई आसमान, ना कोई जमीन, ना कोई मखलूक, कोई चीज भी नहीं थी, तब भी अल्लाह ताला था। और वो अल्लाह ताला को ही पता है कि उस वक्त और क्या और मखलूकात थी जो उसने पैदा की हुई थी। और इसी तरह कितना जमाना गुजरा हमें क्या पता, क्योंकि वो हमेशा से है और हमेशा तक बाकी है। इसी से उसका नाम अलबाकी भी डिराइव किया गया है, अल अव्वल और अल आखिर। तो ये वो दो नाम हैं जो सूरह हदीद में हमें मिलते हैं इसी तरह। लेकिन अलबाकी जो अल्लाह ताला का नाम है, जिसको बका है, यानी और किसी को बका नहीं है, वो है अलबाकी। यानी आप ये देखें कि हर चीज फना होने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी है जिसको कोई जवाल नहीं, जिसके बाकी रहने की कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं है, वो हमेशा है। इवन जन्नत जहन्नुम, हम कहते हैं ना, वो हमेशा बाकी रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें रहने वाले भी बाकी रहेंगे, लेकिन एक वक्त वो था जब वो नहीं थे। जन्नत और जहन्नुम भी मखलूक हैं, पहले मौजूद नहीं थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया। दूसरे ये कि उनके अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं बाकी रहने की, अल्लाह ताला जब चाहे, जब तक चाहे उनको बाकी रखे। तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, और जो अल अव्वल है और अल आखिर है, उसकी इब्तदा कोई नहीं। अब ये बात इंसान के जहन में आनी बहुत मुश्किल होती है, और किसी ने एक दफ़ा मुझे कहा, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला कैसे है हमेशा से, हमेशा से, कोई तो एक दिन होगा। मैंने कहा यही तो हमारा ईमान है कि वो अल अव्वल है और वो अल आखिर है, और कोई और दावा नहीं कर सकता किसी गैरुल्लाह के बारे में कि वो अल अव्वल और अल आखिर है। हर एक कभी ना कभी वजूद में आया, पैदा हुआ, और ये सारे शिर्क की जड़ काट देते हैं। नाम के कोई ऐसा है ही नहीं, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि वो हमेशा से है और हमेशा तक बाकी रहेगी, और जो सबसे पहले और सबसे आखिर है। तो जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, अल अव्वल वही है, और अल आखिर जब वो सबको फना कर देगा, कयामत आ जाएगी, सबको खत्म कर देगा, तब भी वो कहेगा कोई है, कोई है। अब जो वो अपने आसमानों और जमीन को अपने हाथों में लपेट लेगा और फिर सवाल करेगा, कहाँ है दुनिया के बादशाह, कहाँ है दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिरीन, कोई जवाब नहीं आएगा। इवन फरिश्ते भी मौत के मुंह में जा चुके होंगे, उनको भी मौत आ गई होगी। तो जब कोई चीज़ भी नहीं थी उस वक़्त भी वो था, और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये कलिमात भी कहा करते थे, और इनसे भी दुआएं कबूल होती हैं। अंतल अव्वलु फलैसा कबला का शई, व अंतल आखिरु फलैसा बादा का शई। देखिए ये अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात है ना, कि अल्लाह ताला हम तुझ पे ऐसा ईमान रखते हैं जिससे पहले कोई नहीं, जिसके बाद कोई नहीं, यानी इंतहा। हमारा जहन चाहे वहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी अकल छोटी है, हमें इसको सोचने की भी जरूरत नहीं कि कैसे, नहीं हम नहीं जानते, बस उसने बता दिया कि हुवल अव्वल हुवल आखिर, तो हम इसको जानते हैं। हर चीज के वजूद से पहले भी वो था, और हर चीज के वजूद के बाद भी वो ही होगा। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक़्त भी था जबकि कुछ ना था, और उसका अर्श पानी पे था, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को लोहे महफूज में लिखा, और फिर आसमानों ज़मीन को पैदा फरमाया। यानी उससे भी पहले, आसमानों ज़मीन से भी पहले अल्लाह ताला था, मौजूद था। वो ज़ात है जो मखलूक के फना होने के बाद भी बाकी रहेगी। और अल आखिर का मतलब ये नहीं है कि उसकी इंतहा और इख्तिताम कोई है, नहीं, और अल अव्वल का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई इब्तदा हुई है, नहीं, नहीं इब्तदा भी नहीं और इंतहा भी नहीं। यानी वजूद के एतबार से कायनात में कोई भी उसके साथ इस चीज के अंदर मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला की हमने ये सिफत पढ़ी थी ना, अल अहद, वो अकेला है। और मैंने आपको बताया था यूनिक, तो इस यूनिकनेस में भी ये भी चीज उसकी यूनिक है कि वो अल अव्वल और अल आखिर है। अल्लाह अकबर। और सूरह हदीद में ये अव्वल और आखिर और अदाहिर अल बातिन, ये सारी सिफात अल्लाह ताला की आई हैं। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए जाते थे, तो सोने से पहले उन सूरतों को पढ़ते थे जो सब्बहा या युसब्बिहु से शुरू होती हैं, और फरमाते थे कि इनमें एक आयत है जो हज़ार आयतों से अफजल है। और आपको पता है सूरह हदीद भी इसी से शुरू होती है, तस्बीह से ही, सब्बहा से ही। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म किया करते थे कि हम जब बिस्तर पर आराम करने के लिए जाएं तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाती व रब्बल अर्दीना रब्बाना व रब्बा कुल्ली शैइन फालिकल हब्बी वन नवा व मुंजिल तौराती वल इंजीली वल कुरआनी अऊदु बिका मिन शर्री कुल्ली दी शर्री अंत आखिज़ुम बिनासियतिही अंतल अव्वलु फलैस क़बलक शै व अंतल आखिरु फलैस बादक शै व ज़ाहिरु फलैस फ़ौकक शै वल बातिनु फलैस दूनक शै। यहाँ तक अल्लाह ताला की तारीफ करके इक़्दि अन्नी दैन, ए अल्लाह मेरे कर्ज को अदा फरमा दे, व अग़नीनी मिनल फ़क़्र और मुझे मोहताजी से बेपरवाह कर दे, गनी कर दे, मोहताज ना मैं हूँ। तो इस दुआ में भी चारों सिफात हैं। ये दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला किसी का भी मोहताज ना करे, और फकर और इनसे भी महफूज रखे, और अल्लाह ताला कर्ज से भी निजात दे दे। और अज़ाहिर कौन है? जो गालिब है, डोमिनेंट है, वो जो बातिन का उलट है। तो जाहिर भी है और अलबातिन, बातिन जो बातिन का मतलब जैसे आप कहें कि बहुत करीब है, तो बहुत करीब तरीन है इंसान के और हर चीज के। और अलबातिन से ये भी मतलब है कि जो मखलूक की निगाहों से छुपा हुआ, मखलूक की निगाह में आ नहीं सकता, पर्दे में है उसकी जात। और अलबातिन का मतलब ये भी है कि जो तमाम जो पर्दे में चीजें हैं, गैब की चीजें, उनको जानने वाला है, और हमारे भी बातिन को जानता है। और बातिन वो भी है जिसको महसूस नहीं किया जाता, लेकिन उसके वजूद को उसकी निशानियों से जान लिया जाता है। तो वो मखलूक से हिजाब में है, दुनिया में उसको कोई देख नहीं सकता। और जाहिर का मतलब क्या है? कि वो जाहिर है। जाहिर भी कैसे है? कि वो अपने एक्शंस की वजह से जाहिर है, जो वो इस दुनिया में करता है हमारे सामने, जो उसके अफ़ाल हैं। और उस अपनी जो मखलूक है उसके, उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। जो भी चीज़ उसकी खल्लाकी की है, उसमें उसका पता हमें नज़र आता है कि वो अज़ाहिर है इस तरह, लेकिन अलबातिन छुपा हुआ भी है। जाहिर है अपनी सारी जो चीज़ें, हमारे जितना निज़ाम चल रहा है, जो चीज़ें उसने पैदा की हैं, उसमें यकीनी तौर पे ये बात है कि एक रब है जिसने ये सारा निज़ाम चलाया हुआ और ये सब कुछ पैदा किया है, और लेकिन वो है छुपा हुआ। तो जाहिर भी है और बातिन भी है, वो छुपा हुआ भी है और सामने भी है, अगर कोई देखना चाहे कि उसकी निशानियों में से उसको जान सकता है। और इंसान इन नामों पर गौर करे, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर कभी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला के बारे में या दीन के हक होने के बारे में शैतान कोई वसवसा डालता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने ये कहा कि वो कैसे है, तो हमेशा से ये तो हमारी अकल में नहीं आता, समझ नहीं आता, ये तो हमें कुछ भी नहीं, तो फिर फरमाया ये आयत, ये मैंने आपको बताया ना कि सूरह हदीद में है, तो ये पढ़ लें आप सूरह हदीद की। نمبر 3 آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. تو ابن عباس نے یہ نسخہ بتایا، کیونکہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، تو نہیں یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اس کا اس میں کوئی ہمسر نہیں. دیکھو کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں، اور ہر چیز کو فنا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ الباقی ہے. اسی سے یعنی آگے آپ ایک اور اس کے نام کو سمجھیں کہ وہ باقی ہے، سب چلے جائیں گے، سب کو فنا ہوگی لیکن اس کو فنا نہیں ہے. جیسے اور جا رہے ہیں اسی طرح انسان بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا مال و متاع چلا جائے گا. کلو شیئن ہالکن الا وجہ، ہر چیز جو کچھ بھی ہے اس کو فنا ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ذات کے. تو دنیا سے ہر ایک کو چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی ہے. تو جب بھی انسان کو کوئی چیز کے خدشات آئیں یا یہ وہ بھول جائے کہ میں کیوں آیا ہوں، اور کسی چیز کا غم لگ جائے ہائے میرے ہاتھ سے کیوں گئی ہے، تو باقی تو کوئی بھی نہیں رہنے والی چیز، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے. پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہوگا، اور پھر میرے ہاتھ سے جو چیز چلی گئی وہ تو جانے والی تھی، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں. انسان سوچے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس نے تو ختم ہونا ہی ہے، جو اس نے لے لیا وہ تو کبھی باقی رہنا ہی نہیں تھا. آج میرا ہے، کل کسی اور کا ہوگا، پرسوں کسی اور کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نام الباقی کو بھی آپ جتنا سوچیں گے نا، دنیا کے جانے کا غم آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا. اپنے آپ کو انسان کہے جب کسی چیز کی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، اس طرح کی چیزیں ہو، تو خود کو کہیں کہ اے انسان، تو سمجھتا ہے تو ہمیشہ باقی رہے گا؟ نہیں، بلکہ جلدی دنیا تمہارا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کے مردوں کی لسٹ میں لکھ دے گی. والدین زندہ ہوئے تو وہ رو لیں گے، دوست احباب یاد کر کے پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، بچے کچھ دن یاد کریں گے پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے بھی یہ نقش محو ہو جائیں گے. اور اے انسان، تیری قبر کی بلندی کو ہموار کر کے تمہارا نام لکھ دیا جائے گا. تمہارا نام مردوں میں ہوگا تو تمہارا نام مٹ جائے گا. جو قبر کے تختے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نام، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. چند سال بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں، کوئی ان قبروں کو دیکھنے تک نہیں آتا، اور 40-50 سال گزرنے کے بعد تو ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں. تو پھر دنیا کی اتنی فکر کیوں؟ پھر ابدی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. دنیا کا سارا سرمایہ اول تو ہے ہی کتنا، اور ہے ہی بہت تھوڑا، بھی جتنا ہے اس نے بھی ختم ہو جانا، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں. والآخرت خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر ہم اس عارضی زندگی کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، اس فانی کے پیچھے اس طرح پڑی میں کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرنے پہ تلے میں. کوئی حرام کما رہا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ فانی دنیا کی چند دن کی لگژری ہے، اس کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا. کوئی والدین کے مرنے کے بعد وراثت کو تقسیم نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس مال و دولت کے ساتھ میں ہمیشہ ہی رہوں گا. کتنا بھولا ہوا ہے انسان، نہ انسان کتنے دھوکے میں ہے. کبھی آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھا؟ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا کہاں گئے جہانگیر بادشاہ، نور جہاں، شاہ جہاں، بابر، اکبر، وہ بادشاہ جن کے ڈنکے بجتے تھے، جو راج کرتے تھے ایسی سلطنت پہ جہاں ان کے حکم پہ گردنیں اڑا دی جاتی تھی، ان کے کہنے پہ خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے تھے، وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ جھک جھک کے سلامے کرتے تھے، वो जिधर जाते थे उनके आगे लोग बाअदब खड़े हो जाते थे, खामोश बाअदब। वो जिनको अपने दरबार में जगह दे देते थे, वो उसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। वो जिनके लिए सजा का हुक्म दे देते थे, उनके लिए दुनिया अंधेर हो जाती थी। वो जिसको इनाम से नवाजते थे, उसके लिए बड़ी खुशबख्ती का मकाम समझा जाता था, और वो जिससे नाराज हो जाते थे, उसको बड़ी बदबख्ती का दरवाजा समझा जाता था। आज किधर है वो आलीशान महल्लात, कई एकड़ों पे मुहित, जिनकी कनीजें और बांदियां इतनी होती थीं कि अलग उनके लिए हरम बनाए जाते थे। हटो बच्चों के शोर होते थे उनकी सवारियों के आगे, और जब वो ठाट से अपने महलों से निकलते थे तो लोग उनकी एक झलक देखने को उमंड आते थे। आज कहाँ है वो, कहाँ गए वो बादशाह, कहाँ गई वो मलकाएं, वो जिल्ले हुम्मा, हिज मैजेस्टी कहाँ है? कभी नहीं सोचा आपने? कहीं उनकी एक आहट भी सुनाई देती है? जबकि वो तो बादशाह थे, तब भी आज गुम हो गए वो, उनके नामो निशान तक नजर नहीं आते, उनके महल खंडर बन चुके हैं, और उनके मकबरे वीरानी की तस्वीर है। वहां बैठ के लोगों को मैंने देखा है ताश खेलते हुए, उनकी बातें भी किताबों में अब गुम हो गई, और दुनिया को तो उनके नाम भी अब भूलने लगे। कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? 100 साल बाद तो किसी को ये भी पता नहीं होगा कि उनके नाम भी क्या थे। क्या ये इबरत काफी नहीं है हमारे लिए? किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की नूरजहां के मकबरे के बारे में, कहने लगा, दिन में यहां शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। फिर आगे बड़ी लंबी नज़म है, उसमें आगे कहता है, ये आलमे तन्हाई ये दरिया का किनारा है, तुझसे हसीना के लिए हू का नजारा, चौपाए जो घबराते हैं गर्मी से तो अक्सर आराम लिया करते हैं इस रोजे में जाकर। फिर आखिर में कहता है, जो कुछ थे कभी थे, मगर अब कुछ भी नहीं है, टूटे हुए पिंजर से पड़े जेरे जमी है, दुनिया का ये अंजाम है देख ए दिले नादा, हाँ भूल ना जाए तुझे ये मदफने वीरां। बाकी है ना वो बाग, ना वो कसर, ना वो ईवां, आराम के असबाब, ना वो ऐश का सामां, टूटा हुआ एक साहिले रावी पे मकां है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समां है। फिर भी हम भूले में, हम तो ना कोई शहजादियां हैं, ना हमारे शौहर कोई बादशाह हैं, ना हमारी कोई सल्तनत है, ना कोई हुकूमत है, छोटे छोटे मकानों में रहने वाले मकीन हैं। फिर भी हमारा नाज, नखरा, फखर, बड़ाइयां, अल्लाह अकबर, आज हैं कल कुछ नहीं, सिर्फ एक लम्हे की बात है, यहां से वहां का सफर शुरू हो जाता है। एक जात है जिसको बढ़ाई है, जिसको बका है, जो बाकी है, जो आखिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, बाकी और कोई नहीं। अल्लाह अकबर, और हमने कितने शौक पाले में, कैसे हम भाग रहे हैं, दिन होता है और रात होती है, और दुनिया के झंबेले हमारे खत्म नहीं होते। हजरत उमर ने सईद बिन आमिर को हम्स का जब गवर्नर बनाया था कि ए तो एक अरसे के बाद अहले हम्स जब हजरत उमर के पास आए, तो आपने उनसे कहा अपने फुकरा के नाम लिख दो ताकि हम उनकी मदद कर सके। तो उन्होंने फुकरा के नाम लिख के पेश किए, तो उनमें एक नाम सईद बिन आमिर का था। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन सईद बिन आमिर? उन्होंने कहा, वो जो हमारा अमीर है। पूछा, तुम्हारा अमीर फकीर है? कहा, हाँ, कई कई दिन गुजर जाते, उनके घर में आग नहीं जलती। हजरत उमर ये सुन के रोने लगे, और 1,000 दीनार उनके लिए भेजे। जब वो दीनार उनको मिले, तो कहते इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने कहा क्या बात हुई, क्या अमीरुल मोमिनीन इंतकाल कर गए? उन्होंने फरमाया नहीं, इससे भी बड़ा मसला हो गया। परेशान होगी, क्या हो गया? कहते दुनिया मेरे पास आ गई है, फितने मेरे पास आ गए हैं और मुझ पे छाने लगे हैं, यानी ये माल तो फितना है। कहने लगी इसका तो हाल ही है कि अल्लाह के रास्ते में देते हैं। तो अगले दिन वो सारी रकम उन्होंने तकसीम कर दी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली बिन अबी तालिब ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा, फिर फरमाया अल्लाह के बंदो, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि ये ऐसा घर है जो बलाओं से घिरा हुआ है, जिसका एक दिन फना होना मशहूर है, जिसकी खास सिफत है कि ये बदअहदी करता है, इसमें जो कुछ है ना वो जवाल पजीर है। दुनिया अपनी जगह बदलती रहती है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, इसमें उतरने वाले इसके शर से बच नहीं सकते। दुनिया के ऐश में ना लगे रहना, इसकी फरावानी हमेशा नहीं रहती। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा दुनिया का रास्ता उन लोगों से अलग नहीं है जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी उम्रें तुमसे ज्यादा लंबी थी, जिनकी पकड़ तुमसे ज्यादा सख्त थी, जिन्होंने तुमसे ज्यादा शहर आबाद किए थे, जिनकी आबादी के निशान बहुत अरसे तक रहे, उनकी आवाजों का शोर बहुत जमाने तक रहा, लेकिन अब उनकी आवाजें खामोश हो चुकी, बुझ चुकी हैं। अब इनके जिस्म बोसीदा हो चुके, उनके शहर खाली हो चुके, उनके निशानात मिट चुके, चूने वाले महल्लात, मुजयन तख्त, बिछे हुए गाओ तकिए, अब इनकी जगह पत्थर मिल रहे हैं जो इनकी कब्रों में रखे हुए और गारे से बनी हुए। इनके कब्रों के सामने की जगह वीरान है, बेआबाद है। अल्लाह अकबर। इनकी कब्रों की जगह आबादी के करीब है, लेकिन इनमें रहने वाले बहुत दूर जा चुके हैं, उनके पास सिर्फ वहशत है और तन्हाई है, उनको आबादी से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले ये लोग जिंदा थे, अब जा चुके, ऐश और लज्जत वाली जिंदगी गुजार के अब रेजा रेजा हो चुके। इनके मरने पर इनके दोस्तों को बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने मिट्टी में जाके बसेरा कर लिया और ऐसे सफर पर चले गए जहां से वापसी नहीं है। सोचें, जब इंसान यहां से चला जाएगा कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा इस दुनिया में, कभी नहीं। तो कहते हैं तुम भी एक दिन इनकी तरह कब्रिस्तान में अकेले रहोगे, वो सीधा हो जाओगे, तुम भी इस जगह के सपुर्द कर दिए जाओगे और ये कब्र का अमानत खाना तुम्हें अपने अंदर समेट लेगा। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तमाम काम खत्म हो जाएंगे और कब्रों के मुर्दे जिंदा करके खड़े कर दिए जाएंगे? जो कुछ दिलों में है वो सब निकाल के बाहर ले आया जाएगा और तुम्हें उस जलाल और दबदबे वाले रब के सामने अंदर की सारी बातें जाहिर करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। फिर गुनाहों के डर से दिल उड़ने लग जाएंगे और तुम्हारे ऊपर से सारे पर्दे उठ जाएंगे, तुम्हारे सारे ऐब और राज जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया की इस हर जो शय है, हर चीज में एक बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा नक्स है कि ये बाकी नहीं रहनी, ये फानी है, इसको बका नहीं है, सिर्फ अल्लाह अज्जा वजल अल बाकी है। तो फानी जिंदगी और इसके फानी ऐशो आराम में पढ़ के उस आखरत को भूल जाना कितनी बेवकूफी है, क्योंकि ये तो चाहे भली गुजरे बुरी गुजरे, खुशी में गुजरे गम में गुजरे, इसने गुजर ही जाना, लेकिन वो जिंदगी जब शुरू होगी तो वहां किसी चीज को जवाल नहीं होगा और उसने ना खत्म होना। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन महदी ने एक नया महल तामीर कराया तो खलीफा ने कहा, हर एक को इस महल की जियारत करने दी जाए। जो दोस्त होंगे वो देख के खुश होंगे, जो दुश्मन होंगे वो जलेंगे और इसके अंदर कोई ऐब ढूंढेंगे, तो फिर हम उनके ऐब ढूंढने के ऊपर उस नक्स को दूर करेंगे। तो एक फकीर आया, उसने कहा, इस महल में दो नक्स हैं, एक ये कि आप इसमें हमेशा नहीं रहेंगे और दूसरा ये कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा। खलीफा पे इस बात का इतना असर हुआ, उसने ये महल वक्फ कर दिया। तो जो यहाँ की चीजें हैं इन्होंने भी खत्म हो जाना है। वो कितनी ही कीमती नजर आए लेकिन एक दिन इस सोने चांदी पहाड़ जमीन दरिया दरख्त जितनी चीजें हैं इनको भी एक ऐसे जलजले ने आ पकड़ना है कि ये भी खत्म हो जाएंगी। तो बाकी कौन है यहाँ पे? सिर्फ बाकी अल्लाह ताला की जात है। एक वो दिन भी होगा जब फरिश्तों की जान भी वो निकाल लेगा, उनको भी मौत आ जाएगी और हत्ता के मौत के फरिश्ते को भी मौत आ जानी। एक अल्लाह ताला की जात तब भी बाकी होगी और इससे पता चलता है वो किसी का मोहताज नहीं, ना फरिश्तों का, ना इंसानों का, ना इस जमीन का, ना आसमान का, किसी चीज का भी नहीं, क्योंकि एक दिन सबको मौत आएगी लेकिन वो फिर भी बाकी होगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आखरत की फिक्र करें, और जो आखरत की फिक्र करने वाले होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कुराने करीम में उनकी एक सिफत बयान की है कि उनको कभी अपनी नेकियां बड़ी नहीं लगती, वो तो हमेशा खौफ से लरजा रहते हैं कि पता नहीं क्या क्या अमाल ऐसे हो गए कि जो हमारी नेकियां ना कहीं जाया हो जाएं, कि पता नहीं हमारे यहाँ अमाल कबूल भी हुए कि नहीं, और पता नहीं गुनाह कितने हो गए हों कि हमारी आखरत जाया हो जाए। तो अल्लाह ताला के ये नाम हमें याद कराते हैं कि तुम बाकी नहीं हो और तुम्हारे पास रहने वाली कोई चीज बाकी नहीं है, और तुम ना अव्वल नहीं हो कि तुम हमेशा से हो, और तुम आखिर भी नहीं हो कि तुम्हें हमेशा रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, चले जाना है। जब चले जाएंगे तो हर चीज इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, बेहकीकत, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे हमारे पास कितना ही सोना चांदी बैंक अकाउंट जमीनें जायदादें औलाद और हर तरह के ऐशो आराम महल्लात जो मर्जी है, हमारे पास बड़ी से बड़ी हुकूमत भी है तब भी वो हमारे लिए कौड़ियों बराबर भी नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं उसमें इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां पे ये चीजें कुछ भी काम आने वाली नहीं है, वहां पे इन चीजों का इन चीजों ने साथ जाना ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर हम ऐसे इतना वक्त जाया करते हैं। हर एक को सोचना चाहिए, जो जुल्म कर रहा है किसी पे वो भी सोचे, आज जो मेरे पास जोर है, आज जो मेरे पास एक कुव्वत है, एक ताकत है, इसने भी बाकी नहीं रहना। ये जो अपनी जवानी पे इतना नाज है ना कि ऐसे पैर मार मार के चलते, इसने बाकी नहीं रहना। आज जो ये हुसन है, इसको ही चमकाने तमकाने में, इस चेहरे को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कभी टीके लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ओहो, इसने बाकी नहीं रहना, ये खत्म हो जाएगा, इसने मिट जाना है, रुल जाना है मट्टी में। इसके ऊपर इतना वक्त लगाते हो और वो चीजें जो बाकी रहने वाली है उनको भूल जाते हो, तो फिर कौन सी चीज है जो बाकी रह गई? इल्म, इल्म के ऊपर बड़ा नाज है, ये दिमाग तो मट्टी हो जाएगा, इसने भी नहीं रहना, तो क्या बाकी रहेगा फिर? कुछ भी नहीं, चले जाना है यहां से, मत लोगों के ऊपर ज्यादतियां करो, मत उनके हक मारो, मत लोगों को तंग करो, मत किसी के लिए अजियत का बाइस बनो, मत किसी की जिंदगी को हराम कर दो, कि उसका जीना हराम कर दो, मत किसी के ऊपर हावी होके दिखाओ कि मैं हूं, मुझे बड़ा समझो, मेरी मान के चलो, मत करो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। जिसको फना है वो क्या अकड़ दिखाता है,
इसको फनाया, वो क्या बातें बोलता है, उसको कैसे ये बातें जेब देती हैं। वो अल्लाह ताला अलबाकी है, उसके इस नाम को समझो और आजीज इख्तियार करो अपनी जिंदगी में, और जान लो कि तुम अल आखिर नहीं हो, तुम्हें चले जाना है जैसे सब जा रहे हैं। तुम तो बड़े लामतनाही जमाने में आने वाली एक छोटी सी ड्यूरेशन के लिए, इतनी सी मुद्दत के लिए, एक जैसे एक लम्हे का टाइम होता है, इसके लिए तुम दुनिया में आए हो। बस इस टाइम लाइन को देखो, इसमें तो तुम्हारा कहीं निशान भी ना मिलेगा। बड़े बड़े बादशाह मिट गए तो मेरे आपके जैसे हुआ क्या निशान बाकी रहेगा। तो इसलिए उसकी फिक्र करो जिस जिंदगी में हमने दाखिल होना है, और जल्दी ही दाखिल होना है, बहुत दूर नहीं है। इन्नहुम यरौनहु बाईदा व नराहु करीबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको दूर नजर आती है, हमें पता है करीब है, हम कहते हैं करीब है, तो वो करीब ही है, दूर नहीं है। आज से तैयारी करोगे तो कल तक कुछ पाओगे, वरना खाली हाथ होगे। अल्लाह अकबर। तो हम आज का जिक्र भी वो देखते हैं कि जो कोई रोए जमीन पे ये जिक्र कर लेगा तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और ये इतना जबरदस्त जिक्र है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा है जिन पर सूरज तलू होता है। और अल्लाह ताला को बहुत महबूब है ये जिक्र, बहुत पसंद है अल्लाह ताला को ये जिक्र। और ये भी कि इस जिक्र को करने से ऐसा होता है कि जैसे कि दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, इस तरह से गुनाह झड़ते हैं। और ये जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हरज नहीं है, आगे पीछे भी हो जाए तो कोई हरज नहीं, नहीं यानी आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह से भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, लेकिन पढ़े। ये कहना सदका भी है, आपके जोड़ों का सदका भी हो जाता है इसको कहने से। तो जिस जो रब को महबूब है वो कलिमात कितने अजीम होंगे, और जिसने सुबह शाम 100 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, वो ऐसे है जैसे उसने 100 हज कर लिए। और जिसने सुबह शाम 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ऐसे है जैसे इसने 100 गाजियों को घोड़ों पे सवार किया, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वालों के लिए घोड़े दे दिए। और जिसने सुबह शाम 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो ऐसे है जैसे औलादे इस्माइल में से 100 गुलाम आजाद कर दिए। और जिसने सुबह शाम 100 100 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा, उस दिन उसके अमल से ज्यादा अच्छा अमल किसी ने नहीं किया सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ लिया, तिर्मिजी की रिवायत है। तो कितना आसान है जुबान से बोलना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा, तो दूसरे पलड़े में ज़मीन और आसमान भी रख दिए जाएं तो ये कलमा भारी है। और जिसने ये 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह दिया, 1,000 नेकियां उसके लिख ली जाएंगी, 1,000 गुना माफ़ कर दिए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से तो मैंने आपको बताया था, तमलाउल मीज़ान, मीज़ान भर जाता है। और जो हमेशा पढ़ता रहता है दुनिया और आखरत की जिल्लत और रुसवाई से महफूज रहता है। तो ये तो कलिमात बड़े ही शानदार हैं। फिर कितनी देर लगी मुझे सुभान अल्लाह कहने में, कितनी देर लगी है मुझे, नोट करें कितना मेरा वक्त लग गया इसमें, क्या चीज़ है जो हमें रोकती है कि टाइम नहीं है। तो सहरी बनाते बनाते, इफ्तार बनाते बनाते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 100 तो हो जाएगा, लेकिन क्या करें, हम बातों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी याद ही नहीं रहता। तो इसको जारी रखे, चल फिर रहे हैं। तो ये तो कलिमात ऐसे नहीं किसी को याद करने पड़े, कोई पेपर चाहिए, कोई कुछ चाहिए, ये तो वो कलिमात हैं कि जो सबको आते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी भी दुआ बताना चाहती हूँ, दुनिया और आखिरत की सारी ही भलाई आपको मिल जाएगी इस दुआ से। कितनी प्यारी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी, मैं सोचती हूँ हमें तो दुआ मांगनी भी नहीं आती, हमें कहना भी नहीं आता कि किस तरह से हम ऐसे कोई कलमात कह दें सारी भलाई हमें मिल जाए। तो ये इतनी प्यारी दुआ है। अगर आपको जैसे बहुत सारी दुआएं नहीं भी आती होती या कोई दुआएं भूल भी जाएं, तो आप ये दुआ तो ज़रूर ही कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली, अल्लाह मुझे खैर में से अता फरमा, सारी की सारी खैर मुझे दे दे, भलाइयाँ सारी की सारी दे दे, कुल कुल भलाइयाँ दे, आजिली ही व आजिली, जल्दी भी मिलने वाली और देर से भी। जल्दी क्या है? दुनिया। और देर से क्या है? आखरत। मा आलिम तू मिन हूँ व मा आलम आलम, जिनका मुझे पता है और जिनका मुझे नहीं पता। अब कितनी सारी भलाइयाँ, हमारी जाने बला हमें कहाँ पता है कि ये भी हमें मांगनी है। वही है ना कि हमारा इल्म भी नाकिस है, हमारी सोच हमारी मांग भी तो थोड़ी ही है ना। तो आपने सारी ही मांग ली, क्योंकि आपने या तो आपको उसका इल्म होगा या नहीं इल्म होगा, दोनों ही मांग ली आपने, हर तरह की खैर मांग ली और दुनिया और आखरत की हर तरह की खैर मांग ली। और आऊज़ु बिका मिन शर्री कुल्ली, अब हमने शर से भी तो बचना है ना, शर क्या क्या हो सकता है, हर किस्म का शर, दुनिया और आखरत का। आखरत में अजाब है, जहन्नुम है, वहाँ की एंगजाइटी है, वहाँ की परेशानी है, वहाँ पे पुल सिरात है, वहाँ पे मीज़ान है, उन सारी चीज़ों का खौफ है। और वहाँ के कितने सारे शर हैं जो आखरत के हैं, कब्र का अजाब है, और उठ के जाना वहाँ पे खड़े होना, उसके अंदर क्या क्या आगे मरहले आते हैं, बहुत तरह के वहाँ पे शर हैं। दुनिया में भी बेशुमार शर हैं, कहीं बीमारियाँ हैं, कहीं हासिद हैं, कहीं फकरो फाका है, कहीं कुफर है, कहीं और ईमान के जाने का कोई डर है, ये सारे कई फितने हैं, दिजाल का फितना है और फितने हैं, सारे शर कुल्ली ही, आजली व आजली, जो जल्दी उजलत और आजली देर से। मा आलिम तुम्हें हूँ मा आलम आलम, जो मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता, या अल्लाह ताला मुझे क्या पता कौन कौन से शर और फितने, और मुझे उनसे भी पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है ना। अल्लाह मुझे नहीं भी पता, उनसे भी तू मुझे बचा लेना, मुझे अपनी पनाह में ले लेना, क्योंकि कोई बच नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला की मजबूत पनाह में ना आ जाए। सबसे पहले तो शैतान का शर है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, फिर हमारे नफ्स के शरूर हैं, वो और कितनी तरह के शर हैं। अल्लाह हमसे बचा नहीं जाता जब तक कि तू ना हमें अपनी पनाह में ले ले, तो तू हमें बचा ले हर किस्म के शर से, हर किस्म का की बुराई, हर किस्म का फितना इसके अंदर आ गया, हर किस्म के गुनाहों से भी बचना आ गया, क्योंकि वो भी शर है, जिनका मुझे पता है और जिनका नहीं पता। बहुत अच्छी दुआ जो हम मांग सकते हैं, और हमें दुनिया और आखरत की हर भलाई इसमें मिल जाएगी, और हर दुनिया और आखरत के हर शर से हम महफूज हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की पनाह से मजबूत पनाह किसी की नहीं हो सकती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।